नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 15 मार्च 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की मस्जिद में लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी में 49 लोगों की मौत। हमले की यूएन महासचिव ने कड़े शब्दों में निंदा की। इथियोपिया में विमान हादसे में मारे गए संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को न्यूयॉर्क मुख्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। सीरिया में मानवीय राहत के लिए एक सम्मेलन में $7 अरब से ज्यादा की सहायता का संकल्प। और जानिएगा कि महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन में खादी कैसे एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब समाचार विस्तार से। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की मस्जिद में हुई गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाए जाने की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि मुस्लिम विरोधी नफरत की भावना के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता है। गोलीबारी में 49 लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूएन महासचिव ने कहा कि मस्जिद में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ने के लिए आए निर्दोष लोगों पर गोली चलाए जाने से वो बेहद दुखी हैं और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि आज और हर दिन हमें हर प्रकार की कट्टरता और आतंक के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी के लिए जिम्मेदार एक बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। क्राइस्टचर्च की अलनूर मस्जिद में नमाजियों पर हमले का प्रसारण भी कैमरे के जरिए किए जाने की रिपोर्ट आई है। पुलिस ने आग्रह किया है कि इस घटना के दृश्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इथियोपिया में एक विमान हादसे का शिकार हुए संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की स्मृति में यूएन मुख्यालय में शुक्रवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विमान दुर्घटना में संयुक्त राष्ट्र के 21 कर्मचारियों की मौत हुई है।
We come together in sadness and solidarity to pay tribute to our fellow UN family members perished on Sunday. In doing so,
श्रद्धांजलि देते हुए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि बेहद दुखी मन से एकजुट होकर हम संयुक्त राष्ट्र परिवार के साथी कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस समय हम उन सभी मृतकों को भी याद करते हैं जो इस विमान दुर्घटना में मारे गए। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि मृतक यूएन कर्मचारी दुनिया के कई हिस्सों से आते थे और विभिन्न यूएन एजेंसियों के लिए काम करते थे। उनके पास अलग अलग विषयों का ज्ञान था और वे हर दिन एक बेहतर दुनिया बनाने के काम में जुटे थे। इथियोपियन एयरलाइन का ये विमान रविवार को आदिस अबाबा से नैरोबी जा रहा था और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। संकटग्रस्त सीरिया के लिए धनराशि जुटाने के उद्देश्य से ब्रसेल्स में हुए सम्मेलन में करीब $7 अरब की सहायता राशि की घोषणा की गई है। इस राशि से सीरिया में और बाहर रह रहे जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा सकेगी। सीरिया में मानवीय राहत के लिए हुआ ये तीसरा ऐसा सम्मेलन था और इसमें 50 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। गुरुवार को हुए संकल्प सम्मेलन में $8.8 अरब जुटाने का लक्ष्य रखा गया था और 6.97 करीब $7 अरब का वादा किया गया है। सीरिया में संकट 9वें साल में प्रवेश कर चुका है। हिंसा के लगातार खतरों के बीच रह रहे सीरियाई परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। मानवीय राहत के लिए क्षेत्रीय समन्वयक पानोस ममत्सिस ने कहा कि सीरिया में अब भी विकट हालात हैं।
There's still massive humanitarian needs with close to 12 million people who are in need of humanitarian assistance. There is more than 6 million Syrians who are internally displaced in a refugee site-like situation inside Syria.
1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मानवीय राहत की जरूरत है। सीरिया में 62 लाख घरेलू विस्थापितों को सिर ढकने के लिए जगह चाहिए, जबकि 56 लाख शरणार्थी पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने कहा है कि साल 2019 दुनिया को रूपांतरित कर देने वाले समाधानों और जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद करने वाला साल साबित हो सकता है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेंबली के दौरान उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने ध्यान दिलाया कि इस साल सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर वार्ता से पहले का ये समय एक बड़ी महत्वाकांक्षी छलांग लगाने का है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश इस जलवायु वार्ता के जरिए उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में विश्व नेता भाषण के साथ नहीं बल्कि एक योजना के साथ आएंगे, जिसके जरिए समझाया जा सके कि कैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, अच्छी हरित नौकरियां सृजित करने और टिकाऊ शहरों का निर्माण करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि पर्यावरण को इतनी गंभीर क्षति पहुंची है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो लोगों के स्वास्थ्य पर इसके दुष्परिणाम बढ़ते जाएंगे। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक की छठी किस्त को 70 देशों के 250 वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट बताती है कि पर्यावरण संरक्षण में तत्काल तेजी लाए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के शहरों और कई क्षेत्रों में लाखों लोगों के सदी के मध्य तक असामयिक मौत का शिकार होने की आशंका है। ताजे पानी में प्रदूषकों के घुल जाने से सूक्ष्म जीव रोधी प्रतिरोध एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2050 तक मौत का एक बड़ा कारण बन जाएगा। साथ ही रसायनों के शरीर में पहुंचने से महिलाओं और पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के मस्तिष्क विकास पर भी असर होने की आशंका है। इस रिपोर्ट में आहार में मांस की मात्रा कम करने, खाने की बर्बादी रोकने और समुद्र में हर साल जाने वाले 80 लाख टन प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम को अहम बताया गया है। लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर चर्चा के नजरिए से अहम कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन का 63वां सत्र न्यूयॉर्क में इस सप्ताह शुरू हो गया। इस दौरान हो रही चर्चा में महिलाओं और लड़कियों को जरूरत पर आधारित और मानवाधिकारों के अनुरूप मूलभूत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की गई है। अपने उद्घाटन संबोधन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि शक्ति समीकरणों को बदलना, लैंगिक खाई और पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और अब तक मिली सफलता को बचाए रखने की लड़ाई जारी रखने के लिए ये जरूरी है कि महिलाओं को समाज में बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा ने चिंता जाहिर की है कि दुनिया भर में महिलाओं को मिलने वाली राजनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया धीमी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 2015 में लैंगिक खाई को पाटने में 30 साल से ज्यादा का असर लगता, लेकिन अगर मौजूदा रुझान जारी रखते हैं तो लैंगिक बराबरी को हासिल करने में 107 सालों से ज्यादा का समय लग सकता है। खादी वस्त्र नहीं, विचार है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का ये सूत्र वाक्य ग्रामीण आत्मनिर्भरता, विकेंद्रित विकास और आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन गया। खादी का इतिहास यूं तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन वर्तमान दौर में भी इसका महत्व कायम है। टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, रोजगार सृजन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण सहित कई वैश्विक चुनौतियां हैं जिनसे निपटने में खादी का उपयोग और उसका प्रचार प्रसार अहम भूमिका निभा सकता है। न्यूयॉर्क में कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन या महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 63वें सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम खादी गोज ग्लोबल में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में खादी की भूमिका पर भी चर्चा हुई। यूएन समाचार से बातचीत में ऑल इंडिया वीमेन्स एजुकेशन फंड एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा चंद्रा ने बताया कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अनूठा आर्थिक मॉडल है। साथ ही मौजूदा दौर में खादी की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी उन्होंने जानकारी दी।
ऐसा है कि इस साल आपको जैसे मालूम है गांधी जी का 150 साल का सेंटेनरी मनाया जा रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जो 100 साल पहले उन्होंने बात कही थी खादी के बारे में वो आज भी उतनी अहमियत रखती है जितनी तब उन्होंने शुरू किया था कि आत्मसम्मान के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए बाहरी देशों का वो सब ना इस्तेमाल करें और लोग औरतों का सशक्तिकरण हो। तो आज भी हम 70 साल बाद आज़ादी के देख रहे हैं कि इसकी ज़रूरत, स्पेशली हमारे जो ग्रामीण सेक्टर है उसमें इसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये हो गई है क्लाइमेट चेंज और सबकी वजह से किसानों की जो आमदनी होती थी वो काफ़ी अब कम होती जा रही है, लागत ज़्यादा लग रही है और उसकी आमदनी उसमें नहीं मिल रही है, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट होने बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम औरतों को ही हम सोच रहे थे कि उनकी उनके भी आत्मसम्मान के लिए उनके पास भी एक जरिया होना चाहिए कुछ पैसा कमाने का। इस आज के ज़माने में भी खादी और स्पिनिंग और वीविंग इसकी अहमियत बहुत बढ़ सकती है, घर घर में हो सकती है और वर्कशेड्स जो हैं खादी ग्रामोद्योग के वो सब जो है तो उसमें भी हो सकती है। और एक और ये भी बात है जो खादी ग्रामोद्योग या सरकारी मिनिस्ट्री है MSME की, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक ये वर्कशेड्स चलते हैं, क्योंकि खादी मार्क वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन सब चीज़ों को रेगुलेशंस को देखकर इनको मद्देनज़र रखकर फिर उसके बाद कपड़े का स्पिनिंग और वीविंग करते हैं। तो अच्छा, मिडिल मैन इसमें निकल जाता है क्योंकि जो सूत और सब कुछ जो है खादी बोर्ड देता है और जो उसका सामान जो बनता है जो भी, तो वो खादी बोर्ड ही ले लेता है, तो इसमें जो है बिचौलियों का बिल्कुल इसमें कोई वो है भी नहीं।
हाल के सालों में खादी को लेकर एक नई दिशा में प्रयास, नया पुश देखने को मिला है। खादी का इतिहास तो 100 साल से भी पुराना है, अब नए स्तर पर किस तरह से जो प्रयास हुए हैं हाल के सालों में जिससे किसानों को, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इससे और जुड़ने में, इसे अपनी आजीविका का साधन बनाने में और मदद मिली है।
इस पुश से दो चीज़ें हुई हैं। एक ये थी खादी का, जैसे आपको मालूम है वो होता तो गर्मी और सर्दी दोनों समय पहन सकते हैं, लेकिन जो उसका फैब्रिक है बहुत फाइन नहीं होता, हाई फैशन से उसका बिल्कुल जुड़ा ही नहीं हुआ था। लेकिन अब फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो सब इससे जुड़ रहे हैं, उन्होंने क्लस्टर्स को अडॉप्ट किया है, वो डिज़ाइंस दे रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, महीन कपड़ा और बेहतर क्वालिटी का कपड़ा बनाने के लिए वो सब कर रहे हैं, एम्बेलिशर्स हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, सब लोग हैं उन सबको करके, तो आमदनी तो बढ़ती ही है। हमने अभी 21 फरवरी को एक फैशन शो किया था, ये खादी गोज ग्लोबल का नेशनल कर्टन रेजर, जिसमें जो हमारी बड़ी हस्तियाँ हैं, रोहित बल हैं, राजेश प्रताप सिंह हैं, रीना ढाका हैं, अबू संदीप हैं, इन्होंने अपने सारे गारमेंट्स दिखाए थे। ये जब हाई फैशन की चीज़ जब ऊंचे स्तर तक जाएगी तो नीचे तो उस पर फर्क पड़ेगा ही।
फैशन एक बिंदु है जिसको लोकप्रिय बनाने के लिए, और दूसरा है टिकाऊ विकास लक्ष्य 2030 का, जो टिकाऊ विकास का एजेंडा है उससे भी जुड़ा है। काफ़ी विकास लक्ष्य हैं जिससे खादी के इस्तेमाल और रखरखाव से काफ़ी मदद मिल सकती है।
देखिए, खादी का जो है इसका स्पिनिंग वीविंग दो तरह की होती है, एक घर में होती है जो जिसमें सारी तैयारी औरत करती है और उसके बाद जो है आदमी उसकी स्पिनिंग वीविंग का करता है, लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जबकि किसान का उसमें अपने गांव में काम नहीं हो, मतलब सीजनल ही होता है, सिंचाई या खेती बाड़ी का जब काम का जो बीच का जो समय होता है जब नहीं होता ये सब, उसी समय ये हो पाता है, तो उससे पैसे आमदनी ज़्यादा नहीं हो पाती। दूसरा है वर्कशेड मैनेजमेंट में, जो वर्कशेड्स बनाए हुए हैं खादी ग्रामोद्योग ने, तो उधर जो है औरतें आकर वहाँ पे काम करती हैं, वहाँ पे लाइट और सारी सुविधाएं सारी दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू 2030 एजेंडा फॉर चेंज, सारे उनके लक्ष्य वो ही हैं, और उन्होंने कई सारी चीज़ें करी हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये नहीं कि औरत को उसी काम के लिए कम पैसा दिया जा रहा है, सेम पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, रिकग्निशन ऑफ अनपेड केयर वर्क, जब घर में ये स्पिनिंग वीविंग होती है तो घर का सिर्फ यही नहीं कि महिला कर रही है, पूरा परिवार जो है इसमें लग जाता है, एक हाथ चलाने में सभी का वो हो जाता है, तो उसमें ये भी होता है कि रिकग्निशन हो जाता है कि औरत का और भी काम है, घर का काम भी कर रही है, मदद इसमें भी हो रही है। ऐसे ही धीरे धीरे देखिए ये सब रूल्स रेगुलेशंस हों, लेकिन जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इस माइंडसेट चेंज करने के लिए एक तो महिलाओं को स्वाभिमान उनके उनमें जगाना पड़ेगा, और ये स्वाभिमान तब होता है जब उसके हाथ में पैसा होता है, तो जब पैसा होता है तो खुद ही फिर और सबसे पहला वो खर्च करती है किस पे, बच्चों के एजुकेशन पे करती है, पोषण पे करती हैं, इन सब घर की इन सब चीज़ों पे करती हैं, तो परिवार का भी स्तर ऊंचा होता है जब औरत का स्तर ऊपर होता है।
ये थी ऑल इंडिया विमेंस एजुकेशन फंड एसोसिएशन की आशा चंद्रा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।